जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद चंद जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम 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 निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम एक चक्र राम जय एक चक्र राम एक चक्र राम जय एक चक्र राम जय गौर प्रेमानंद। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, आज नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है। नित्यानंद प्रभु की, तो आज हम सब प्रयास करेंगे नित्यानंद प्रभु जी का गुणगान करने का और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी गौरांग महाप्रभु के चरणों में शरण प्राप्त हो, उनका प्रेम प्राप्त हो और हम सबका शुद्धिकरण हो। तो चैतन्य चरितामृत के ग्रंथ राज चैतन्य चरितामृत से की आदि लीला अध्याय 5 का ये पर्याय है। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार उत्तम अधम किछु न करे विचार प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार उत्तम अधम किछु न करे विचार प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार उत्तम अधम किछु न करे विचार। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार उत्तम अधम किछु न करे विचार। इसका अनुवाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद दोहराएंगे। चूंकि वे प्रेम में मस्त रहते हैं और कृपा के अवतार हैं, अतएव वे अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं बरतते। ओम अज्ञानात मेरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते खलो कल्मषनाशाय जानवे पतये नमः। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं अपने भजन में, हिने निताय बिना राधा कृष्णा पाए देना, कि नित्यानंद प्रभु जी कृपा के बिना हमें राधा कृष्ण का प्रेम नहीं मिल सकता। नित्यानंद प्रभु जी आदि गुरु हैं, वास्तव में वो गुरु तत्व हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए वो समष्टि गुरु हैं, और जितने भी गुरु हैं सबके सब व्यष्टि गुरु हैं जो उनके प्रतिनिधि हैं। ही द सम टोटल ऑफ ऑल गुरुज, तो आदि गुरु हैं, और बिना उनकी कृपा के हमें ना चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल सकती है और ना ही राधा कृष्ण कृपा मिल सकती है। और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, इसलिए अगर हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करनी चाहिए। श्रीमती राधा रानी जी भी गुरु तत्व हैं। श्रीमती राधा रानी जी गुरु हैं उन अंतरंग पार्षदों के जो कि राधा कृष्ण की गोहितम लीलाओं में भाग लेते हैं, और उन गोहितम लीलाओं में वही भक्त प्रवेश कर सकते हैं जिनको पर नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हो। यानी जब तक नित्यानंद प्रभु जी की कृपा नहीं होगी, राधा रानी ऐसे भक्तों को अपनी अंतरंग लीलाओं में प्रवेश नहीं होने देंगे। यानी कि नित्यानंद प्रभु ही रिकमेंड करते हैं और राधा रानी फिर उनको नित्य लीला में प्रवेश करवाती हैं। जिस ढंग से बलराम जी कृष्ण से अभिन्न हैं, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न हैं। श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो जिस ढंग से बलराम जी कृष्ण से अभिन्न हैं, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न हैं। कृष्ण अपना ही विस्तार करते हैं बलराम के रूप में ताकि अपनी सेवा की जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है या आध्यात्मिक जगत का जो अस्तित्व है वो बलराम जी के द्वारा किया जाता है। बलराम जी ही कृष्ण के पादुकाएं बनते हैं, बलराम जी ही कृष्ण का आसन बनते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। तो कृष्ण अपना ही विस्तार कर रहे हैं बलराम जी के रूप में अपनी सेवा कराने के लिए। तो कृष्ण तो जो बलराम जी हैं वो कृष्ण के मूल विस्तार हैं, सबसे पहले विस्तार हैं। और कृष्ण तो अपनी लीला में रमते हैं गोकुल में अपने पार्षदों के साथ, लेकिन जीवों का उद्धार करने के लिए और अपनी दूसरी लीलाओं करने के लिए वो बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं। फिर बलराम जी से महासंकर्षण, फिर चतुर्व्यूह, फिर नारायण, फिर दूसरा चतुर्व्यूह, फिर महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, इस तरह से सृष्टि की रचना होती है। लेकिन जो कृष्ण है वो तो अपने लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये पूरे सृष्टि की रचना करना और जीवों का उद्धार करना ये सारा कार्य बलराम जी से शुरू होता है। तो देखा जाए बलराम जी ही सब कारणों के, सब अवतारों के कारण है, और यही बलराम जी नित्यानंद प्रभु हैं। लेकिन जिस ढंग से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कृष्ण की लीलाओं से ज्यादा मधुर हैं, उसी ढंग से नित्यानंद प्रभु जी की लीलाएं बलराम जी की लीलाओं से बहुत मधुर हैं। बलराम जी ने तो जब यहां प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व, तो वो उनको थोड़ा सा भी क्रोध आता था तो असुरों का वध करते थे। नैमिषारण्य में गए तो रोमहर्ष सुधा जी ने उनको प्रणाम नहीं किया तो एक घास के तंगे से उनका सर काट दिया, है ना। यमुना जी पे क्रोध आया तो यमुना जी को खींच लिया, तो वो बहुत क्रोधित थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध कभी क्रोध नहीं करेंगे, परमानंद हमेशा आनंद में रहेंगे, तो ये है नित्यानंद। तो उनकी जो लीलाएं हैं वो बलराम जी की लीलाओं से भी बहुत मधुर हैं। इसीलिए नित्यानंद चरितामृत जो कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है, उसके अंत खंड में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु जी के का आदर करेगा, प्रेम करेगा, उनसे कृपा की याचना करेगा, उनको मेरा प्रेम प्राप्त होगा। और भी बताया गया है कि सारे के सारे देवतागण ब्रह्मा और शिव तक भी नित्यानंद प्रभु जी का आदर करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और यह बताया गया कि अगर जो नित्यानंद प्रभु को आदर नहीं देगा तो चैतन्य महाप्रभु करें चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये समझना अति आवश्यक है कि बिना नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के हम भक्ति में आगे प्रगति कर ही नहीं सकते। वो गुरु तत्व हैं, और जब गुरु हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमें राधा कृष्ण का प्रेम मिलता है। तो यही नित्यानंद प्रभु जी आज ही के दिन प्रकट हुए थे सन 1474 में एक चक्र गांव में। इनके पिताजी का नाम था हराई पंडित और माता का नाम था पद्मावती। हराई पंडित भगवान के बहुत ही विशुद्ध भक्त थे और बहुत बड़े विद्वान थे और बिल्कुल वैरागी थे। और माता पद्मावती भी अलादनी शक्ति का रूप थी, तो दोनों ही भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, तभी वो नित्यानंद प्रभु के माता पिता के रूप में यहां पे आ रहे हैं। और जब बालक नित्यानंद प्रकट हुए तो बहुत ही सुंदर थे, उनके कमल के समान आंखें थी, हीरे के समान चमकते हुए उनके दांत थे और बहुत ही उनका सुनहरी रंग था। एक चक्र धाम के जितने भी निवासी थे उनको नित्यानंद प्रभु से अपनी संतानों से ज्यादा प्रेम था। जैसा कि हम देखते हैं कृष्ण लीला में भी ब्रजवासियों को कृष्ण अपने पुत्रों से ज्यादा प्रिय थे। तो यही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया कि ये कैसे संभव है, कोई किसी से कितना भी प्रेम करे लेकिन अपनी संतान से ज्यादा प्रेम कैसे कर सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो ये कैसे संभव है कि ब्रजवासी अपनी संतान से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करते थे? तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया था कि जिससे हम प्रेम करते हैं स्थान स्थिति में वो तो केवल शरीर है, और ये शरीर तब तक रहता है जब तक इस शरीर में परमात्मा, तो वास्तव में हम प्रेम परमात्मा से ही कर रहे हैं और वही परमात्मा कृष्ण के विस्तार है। तो इसी ढंग से एक चक्र गांव के जो नित्य में निवासी थे उनको नित्यानंद प्रभु से बहुत ज्यादा प्रेम था। और जैसे ही इनका जन्म हुआ था तो उस समय राधा देश में जो अकाल पड़ा हुआ था, अकाल दूर हो गया, नदियों में पानी बहना शुरू हो गया, चारों तरफ सब शुभ शुभ और ब्राह्मणों के हृदय आनंद से भर गए। तो ऐसे लगा जैसे के सारे सब के सब जगह शुभ शुभ हो रहा है। और नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर थे ऐसा लगता था कि उनका पूरा शरीर मक्खन से बना हुआ है, तो किसका मन नहीं करेगा उनको आलिंगन करने का। बहुत ही नर्म और बहुत ही सुंदर शरीर था, उनका रूप था। और बचपन से ही वो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे, उनके जो सारे खेल होते थे कृष्ण लीला या रामलीला पे होते थे, और वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे कि सारे लड़के उनके साथी लोग इकट्ठे मिल जाते थे, वो देवता का रूप धारण करते थे और सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, और ब्रह्मा जी जाके फिर एक नदी के तट पे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर पीछे से आकाशवाणी करते थे कि मैं शीघ्र ही प्रकट होने वाला हूं, और फिर वो अपने अपने घरों में घुस के कमरे में घुस के सारे के सारे बिजली बंद करके अंधेरा करके, बिजली तो नहीं होगी उस समय, सारा प्रकाश बंद करके, और ऐसे दिखाते थे कि मथुरा के जेल में भगवान का आविर्भाव हो गया है। और फिर कोई कोई बच्चा एक छोटी सी टोकरी में कुछ डाल के वसुदेव जी बन के उसको गोकुल ले जा रहे हैं, और फिर वहां से कुछ और ला के वापिस जेल में रख रहे हैं, और फिर पूतना, कोई बच्चा पूतना बन जाएगा और दूसरा बच्चा बन के उसको वध कर रहा है। तो इस ढंग से हर तरह की लीलाएं कर रहे हैं। फिर उनके पास उनके गांव में एक बरगद का पेड़ था जिसमें कि बकुल ट्री था, जिसमें तरह तरह की शाखाएं थी, तो वो बकुल के शाखाओं को लाकर पद्मावती कुंड जहां पे पद्मावती जी नित्यानंद प्रभु को स्नान कराती थी उसमें जाके रख देते थे, और नित्यानंद प्रभु उस पर नाचते थे जैसे कि वो कालिया का दमन कर रहे हो। तो इस तरह से सुंदर सुंदर लीलाएं, माखन चुराने के लिए लोगों के घर में घुस जाते थे और सची में उनका माखन चुरा के ले आते थे। तो सारे ब्रजवासी सारे एक चक्र धाम के वासी परेशान हो जाते थे कि इनको कृष्ण लीला किसने सिखाई। और फिर एक बार इन्होंने अक्रूर जी की लीला की कि कैसे अक्रूर जी आके कृष्ण बलराम को वापस मथुरा ले जा रहे हैं, तो उसमें इन्होंने बालक नित्यानंद ने गोपी का रोल प्ले किया, और जब गोपी का रोल प्ले किया तो बहुत जोर जोर से रोने लगे, उनके आंखों से अश्रु धारा रुकी नहीं रही थी। तो सब के सब लोग हैरान हो गए कि रोना क्यों नहीं बंद कर रहे, इतनी जोर जोर से रो रहे हैं कि जैसे वास्तव में कृष्ण को वापस ले जाया जा रहा है। तो तरह तरह के ये नाटक करते थे, और सब नाटकों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर मेन एक्टर नित्यानंद प्रभु होते थे, यही सबको डायरेक्ट करते थे। और रामलीला में इनकी विशेष रुचि थी, और रामलीला में बिना बताए ये लक्ष्मण का रोल करते थे, और लक्ष्मण का एक बार रोल करते करते ये मूर्छित हो गए। तो मूर्छित हो गए तो मूर्छित पड़े रहे, सारा खेल खत्म हो गया लेकिन ये उठ ही नहीं रहे। तो हराई पंडित और पद्मावती बहुत चिंतित हो गए, क्या हो गया इनको, तो सब परेशान हो गए लेकिन वो वापस चेतना में नहीं आ रहे। तो तब किसी एक बालक ने कहा, हाँ इन्होंने पहले बताया था कि ऐसा जब होगा मैं मूर्छित हो जाऊंगा तब तुम्हें हनुमान जो है उसको जाकर बूटी लानी पड़ेगी, तभी मैं वापस चेतना में आऊंगा। तो समय पर ये भी करके देखो, तो वो गए और बिल्कुल जैसे हनुमान जी को कहीं संघर्ष करने पड़े वो पर्वत उठाकर लाने के लिए, तो वास्तव में सब संघर्षों को करते हुए पूरा का पूरा वो किया गया, लीला की गई। उसके बाद जैसे ही वो आए उनको बूटी सुंघाई और नित्यानंद प्रभु चेतना है यहाँ पे। तो नित्यानंद प्रभु की तो इस तरह से बहुत सुंदर उन्होंने बचपन की लीलाएं की और पूरे के पूरे एक चक्र धाम के जो निवासी थे सबके सब नित्यानंद प्रभु के प्रेम में डूबे रहते थे। जो बच्चे थे उनके साथ देर काल तक उनका साथ छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो अक्सर हम भी देखते हैं कि जब बच्चे घर में वापस लेट आते हैं तो माता पिता बहुत क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध करते थे, लेकिन देखते थे कि नित्यानंद प्रभु के साथ हैं तो उनका रूप देखते ही सारा का सारा क्रोध भूल जाते थे। तो पूरा का पूरा एक चक्र धाम नित्यानंद प्रभु जी के प्रेम में डूबा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में एक बार एक सन्यासी आते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये मेरे अवतरण का कारण नहीं है कि मैं खेल कूद करता रहूं, मुझे तो संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करना है, पवन जीवों का उद्धार करना है, तो इस संकीर्तन आंदोलन के प्रचार के लिए मुझे घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये देखिए भगवान कैसे बद्धजीवों के उद्धार के विषय में सोचते हैं। तो मुझे तो बद्धजीवों के उद्धार के लिए घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो उनके भगवान के ही विशेष प्रबंध के कारण एक सन्यासी वहां पर आए और हराई पंडित जी ने उनकी खूब देखभाल की। तो हराई पंडित जी ने कहा कि आप प्रसाद पाइए। तो बोले मैं प्रसाद तभी पाऊंगा जब मुझे दान में कुछ आप दोगे। पर निश्चित रूप से आप सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूं, मैं तो आपको दान दूंगा ही दूंगा, आप प्रसाद तो पाइए। तो उन्होंने प्रसाद पाया और उन्होंने फिर खूब कृष्ण कथा की। जब कृष्ण कथा की सुबह वो जाने लगे तो हराई पंडित जी ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो फिर सन्यासी ने कहा अगर तुम वास्तव में मेरी सेवा करना चाहते हो। बोले हाँ निश्चित रूप से। तो बोले ठीक है अपना ये प्रिय पुत्र नित्यानंद मुझे दे दो। तो जैसे ये सुना तो राई पंडित के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया और स्तब्ध हो गए कि ऐसा तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे सबसे प्रिय पुत्र को वो मांग लेंगे। उनको ऐसा लगा जैसे सन्यासी ने कोई दान नहीं मांगा, मेरा जीवन मांग लिया है। और फिर जब उन्होंने ये खबर माता पद्मावती को सुनाई वो तो बेहोश हो गए सुनते ही कि कैसे संभव है। लेकिन हराई पंडित ने सोचा कि इतिहास में ऐसे उदाहरण है कि विश्वामित्र जी ने भी आकर दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा था तो देना पड़ा था, तो अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, देना पड़ेगा। तो उनको लेकिन देखकर ये हैरानी हो रही थी कि हम लोगों को इतना शोक हो रहा है, लेकिन जो बालक नेताई है ये बिल्कुल वैराग्य में है, इसको कुछ भी दुख नहीं हो रहा और ये बहुत आतुर है जाने के लिए सन्यासी के साथ। तुमको समझ नहीं आ रहा था। और सबकी आंखों के सामने वो सन्यासी इस बालक को ले गए। सारे के सारे एकदम वासी की जो एक चक्र धाम के निवासी हैं विलाप कर रहे हैं, लेकिन बालक ने और सन्यासी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब उनकी आंखों से ओझल हो गए तो सबके सब पागल हो गए। एक चक्र धाम के निवासियों ने तब इधर भागना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे हमारे पुत्रों को ले जाओ, एक नहीं सारे पुत्रों को ले जाओ, लेकिन इसको वापिस कर जाओ हमें। लेकिन कुछ लाभ नहीं था, सन्यासी बहुत दूर जा चुका था। तो उसके बाद हराई पंडित जी पूरे शोक में डूब गए और पूरा पूरा एक चक्र धाम ऐसा लग रहा था जैसे भूतों का निवास हो रहा हो वहां पे। जब लोग बकुल के उस पेड़ को देखते थे जिसपे नित्यानंद प्रभु लीला करते थे, पद्मावती कुंड को देखते थे, तो लोगों को और उनका स्मरण होता था, तो लोग शोक में डूब जाते थे। हराई पंडित जी ने 3 महीने तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया और ना सोए और हमेशा नित्यानंद प्रभु के प्रेम में वो विलाप करते रहे। और उनका विलाप इतना हृदय वतीन करने वाला था कि पत्थर भी पिघल जाए। और उस समय के जो दुष्ट यामन लोग थे वो भी उनके हृदय की चिल्लाहट को सुनकर रो पड़े। और उसके बाद हराई पंडित जी ने नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया और भगवत धाम वापिस चले गए। तो कोई ये पूछ सकता है कि क्या जरूरत पड़ी थी नित्यानंद प्रभु को। हराई पंडित जी शुद्ध भक्त हैं, सारे एक चक्र धाम के निवासी बालक कृष्ण लीला कर रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ी थी ऐसे परिवार को छोड़ के जाने की। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के कार्य को हम समझ नहीं सकते अपनी भौतिक बुद्धि से। हायर कॉज के लिए, उच्चतर कार्य करने के लिए ये त्याग करना ही पड़ता है। बिना त्याग के हमारे जीवन में कभी सफलता नहीं आ सकती, त्याग तो करना ही पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विधवा माँ को छोड़ा, सुंदर यौवन युवा पत्नी को छोड़ा 24 वर्ष की आयु में, किस लिए? हम सबके भले के लिए। षट गोस्वामियों ने इतने त्याग किए किसके लिए? हम सबके बद्ध जीवों के उद्धार के लिए।
भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में गए किस लिए, हम सबके उद्धार के लिए। तो भगवान अपनी लीलाओं से दिखा रहे हैं कि बिना त्याग किए हम अपना उद्धार नहीं कर सकते और न ही दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को भी हायर कॉज के लिए घर छोड़ना पड़ा और घर छोड़कर वो तीर्थों के भ्रमण में चल पड़े। तो सारे तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया, गया, वाराणसी, अयोध्या। अयोध्या में गए तो उनको फिर से भगवान राम की और लक्ष्मण की लीलाओं का स्मरण हुआ और घूमते घूमते वो कांचीपुरम नीचे चले गए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी, और वहां देख रहे हैं कि शिव के भक्तों में और विष्णु के भक्तों में लड़ाइयां हो रही हैं। तो देख कर हंस रहे हैं कि क्यों लड़ रहे हैं बेफजूल। फिर वहां पे उनको कुछ लोग बुद्धिस्ट लोग मिले, तो बुद्धिस्ट लोगों से उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, तो कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो नित्यानंद प्रभु जी ने उनके सर पर लात मारी। तो देखा जाए तो उन बुद्धिस्टों का बहुत बड़ा सौभाग्य था, वो तो विश्वास में नहीं करते कि भगवान है कि नहीं, लेकिन वो फिर भी पता नहीं क्यों कौन सी मेडिटेशन में रहते हैं, जब भगवान का अस्तित्व नहीं मानते फिर भी अपने शुद्धिकरण के लिए मेडिटेट कर रहे थे। तो उनकी इच्छा पूरी करेगी, तो अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो कि भगवान के चरणों की धूल से और क्या शुद्धकारी चीज होगी। तो नित्यानंद प्रभु ने उनके अपने चरणों की धूल दी, हालांकि उनकी कोई योग्यता नहीं थी। इस तरह से घूमते 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 वो पहुंचे पंडरपुर, और पंडरपुर में एक ब्राह्मण के घर में रहे। और ये जो ब्राह्मण थे ये भी बहुत बड़े भक्त थे और ये लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य हैं। लक्ष्मीपति तीर्थ जी बहुत ही बड़े वैष्णव थे, भगवान के शुद्ध भक्त, लेकिन उनकी आयु बहुत ज्यादा हो गई थी। और यही लक्ष्मीपति तीर्थ माधवेंद्रपुरी जी के भी गुरु थे। तो माधवेंद्रपुरी जी के गुरु भाई के यहां ये रह रहे थे नित्यानंद प्रभु, और उन्होंने कहा था, वो अपने गुरु महाराज के बारे में बता रहे थे, वो कह रहे थे कि बड़े शीघ्र ही वो आने वाले हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि आप इनको मेरे विषय में कुछ बताना मत। तो जब लक्ष्मीपति तीर्थ जी वहां पे आए अपने शिष्य घर में रुके, तो उन्होंने कहा कि शिष्य क्या बात है, सब कुछ बहुत शुभ दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ही महान व्यक्ति यहां पे ठहरा हुआ है। तो उस ब्राह्मण को मना किया हुआ था नित्यानंद प्रभु ने, बोला नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उनको लगा कुछ ना कुछ है। वो पूरा दिन कृष्ण कथा करते रहे और सोने से पहले उन्होंने बलराम जी से प्रार्थना की कि मुझे कृष्ण प्रेम दे, और स्वप्न वो सो गए। और जब वो सोए तो फिर उस रात उनको एक बहुत सुंदर स्वप्न आया। तो उस सपने में वो क्या देखते हैं कि हलधारी बलराम जी प्रकट हुए हैं, और बलराम जी ने बहुत सुंदर उनका सुडोल शरीर है, कमल के समान उनकी आंखें हैं, और हल उन्होंने धारण किया हुआ है, और नील वर्ण की धोती और नील वर्ण की पगड़ी। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। उन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ जी के कान में एक मंत्र सुनाया, बोले इस मंत्र को याद कर लो और कल सुबह एक अवधूत ब्राह्मण आएंगे तुम्हारे पास, तुमने उनको दीक्षा देनी है। तो ये कहकर वो अब प्रकट हो गए। अब सुबह सुबह उठे तो कौन पहुंचे उनके पास, नित्यानंद प्रभु पहुंच गए। तो वो समझ गए कि ये स्वयं बलराम जी हैं, और उन्होंने उनको दीक्षा दी, और दीक्षा देके वो चल पड़े वहां से, और नित्यानंद प्रभु जी भी आगे चल पड़े। और नित्यानंद प्रभु जब एक प्रतीची तीर्थ में पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई लक्ष्मीपति तीर्थ जी के मुख्य शिष्य माधवेंद्रपुरी जी से। माधवेंद्रपुरी जी चैतन्य महाप्रभु के जो भक्ति रूप वृक्ष के क्या हैं, जड़ हैं, और पहले आचार्य हैं जिन्होंने विरह भाव को प्रकट किया। माधवेंद्रपुरी जी जब आकाश में बादल को देखते थे तो कृष्ण कृष्ण कहकर रो पड़ते थे। तो उनके साथ उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी जी और अन्य शिष्य। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी जी को देखा तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि मैंने इतने तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया है, आज उन तीर्थ स्थानों का फल मुझे मिल गया। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जो इस लीला को सुनता है कि किस ढंग से नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी जी का मिलन हुआ, उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो दोनों ही ने एक दूसरे का आलिंगन किया और उनके नेत्रों से इतनी अश्रुधारा बह रही थी कि एक अश्रुधारा से एक दूसरे का अभिषेक कर दिया। और बाकी जो शिष्यगण थे वो हैरान हो रहे थे इस दृश्य को देखकर कि दोनों ही रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और माधवेंद्रपुरी जी कह रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है कि मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु जी ये कह रहे हैं कि मुझे सारे तीर्थ यात्रा का फल अब मिल रहा है कि मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। और दोनों नित्य हमेशा कृष्ण कथा करते रहते और कृष्ण कथा करते करते रोते चिल्लाते और तरह तरह के भाव प्रकट करते। तो उसके बाद फिर दोनों अलग हो गए, क्योंकि सबको भगवान की सेवा में रत रहना है भक्तों को। तो नित्यानंद प्रभु जी भ्रमण करते करते वापस आ गए वृंदावन, और वृंदावन में पहुंचते ही वो गए रामघाट, और फिर उनको सारी की सारी लीलाओं का स्मरण हुआ और वो व्रज की रज में लौटते रहते और कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्लाते। और फिर वो चिल्लाते चिल्लाते ये प्रार्थना करते कि हे भगवान, आप कब और संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करेंगे? बोले, मैं तब तक वृंदावन में रहूंगा जब तक आप इस संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ नहीं करेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि अद्वैताचार्य जी ने भी अहंकार लगाई थी और भगवान का अनेक प्रकटी के लिए उनको निवेदन किया था। और यहां पे नित्यानंद प्रभु जी वृंदावन में भगवान को बुला रहे हैं कि आप आइए, आ तो गए हैं, लेकिन आप संकीर्तन आंदोलन कब प्रारंभ करेंगे इन जीवों के उद्धार के लिए? तो लगभग 20 वर्ष तक नित्यानंद प्रभु जी ने तीर्थों का भ्रमण किया। जब उनकी आयु 32 वर्ष की हो गई, तब उनको मालूम चला कि अब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गया में ईश्वरपुरी से दीक्षा ले ली है, अब वो नवद्वीप में आ गए हैं और नवद्वीप में आकर अब वो कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। तो गौरांग महाप्रभु की। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, अब ठीक है, अब सही मौका है, अब मुझे नवद्वीप में जाना चाहिए और इस संकीर्तन आंदोलन में भगवान की सेवा करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु जी हमेशा अवसर ढूंढते हैं कि कैसे वो अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सके। 20 साल तक उन्होंने तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन इन 20 सालों में उन्होंने कभी भी प्रचार नहीं किया। क्यों नहीं किया बता सकते हैं? क्योंकि वो चाहते थे ये संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु शुरू करें, तो स्वयं उन्होंने बिल्कुल प्रचार नहीं किया। और दूसरा, वो अपने आप को बिल्कुल अयोग्य समझते थे कि वो संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु फिर चले गए नवद्वीप में। नहीं, अभी भी उन्होंने सोचा कि मैं इनका बड़ा भाई हूं, मैं अपने आप प्रकट नहीं होऊंगा इनके सामने, मुझे छुपाना पड़ेगा। तो नवद्वीप उन्होंने कहां छुपाया अपने आप को? नंदन आचार्य जी के घर में। तो अब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आ गए हैं और चैतन्य महाप्रभु शिवा सांगन में उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो संकीर्तन आंदोलन एक बार करते करते भावावेश में आकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि निश्चित रूप से अब एक महान व्यक्ति नवद्वीप में आ गया है, बहुत जल्दी वो आने वाला है। और अगले दिन उन्होंने बोला कि मुझे एक बहुत ही अद्भुत सा स्वप्न आया है, और उस स्वप्न में उनको प्रकट हुए उनके बलराम जी, जिन्होंने फिर से वो नीले वस्त्र धारण किए हुए थे। और बलराम जी चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि निमाई का घर कहां है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन? बोले, मैं निमाई के से मिलना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनको देखा, उनकी आंखों को देखा, उनके भावों को देखा, तो उन्होंने, ये तो कृष्ण प्रेम में बिल्कुल डूबा हुआ है, कृष्ण प्रेम में पागल है, जिसका इनका कृष्ण प्रेम में कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो इस ढंग से उनका स्वप्न टूटा। और जब वो फिर सब उन्होंने बोला अपने साथियों को, श्रीवास ठाकुर जी को और हरिदास ठाकुर जी की, जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। तो दोनों भक्त बड़े उत्साह से निकले और सब जगह वो गए, सब मंदिरों में, गंगा के तट में, धर्मशालाओं में खूब ढूंढा। 9 घंटे तक वो नवद्वीप में घूमते रहे, लेकिन उनके सामने नित्यानंद प्रभु प्रकट नहीं हुए। जब तक नित्यानंद प्रभु की इच्छा नहीं होगी, वो अपने भक्तों के सामने प्रकट नहीं होते। तो आगे वापस बोला चैतन्य महाप्रभु को कि हमें तो कहीं मिले नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चलो मेरे साथ। तो भगवान तो परमात्मा है, सब जानते हैं कहां छिपे हुए हैं वो। तो भगवान उनको ले गए सीधा नंदनाचार्य जी के घर में। तो जब नंदनाचार्य जी के घर में वो पहुंचे, तो बाहर छत पे विनांडे में ही खड़े थे नित्यानंद प्रभु। तो देखते ही चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर और सबके सब पार्षदों ने उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। और जब दंडवत प्रणाम करके वो उठे और नित्यानंद प्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो नित्यानंद प्रभु बिल्कुल स्तब्ध हो गए। बिल्कुल वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में डूब गए। उनकी आंखें चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप को सराह रही थी, उनके कानों में केवल चैतन्य महाप्रभु का गुणगान चल रहा था, अपने त्वचा से उनका स्पर्श कर रहे थे, जीवा से उनका स्वादन कर रहे थे, तो बिल्कुल स्तब्ध हो गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला कि आप कुछ भागवतम के श्लोकों का वर्णन करो। तो फिर श्रीवास ठाकुर जी ने वो प्रसिद्ध श्लोक बोला, वराह पीड़म नटवर वपु करण्यो कर्णिधारम, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं, मोर का पंख लगाए हुए, बंसरी बजाते हुए जब लौटते हैं गायों को चराते हुए, तो किस तरह से उनके शरीर पे धूल आती है और कितने सुंदर लगते हैं वो। तो ये जैसे ही सुना तो नित्यानंद प्रभु भावावेश में आ गए और लौटने लगे, चिल्लाने लगे, जोर जोर से कूदने लगे। तो सब भक्तों ने उनको शांत करने का प्रयास किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कोई भी शांत नहीं कर पाया। तो उनको किसने पकड़ा? फिर चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पकड़ा और उनका आलिंगन किया। जब इस दृश्य को देखा तो गदाधर पंडित ने कहा कि यार सब काम उल्टा हो गया है। कैसे उल्टा हो गया है? कि वैसे तो अनंत शेष जी के ऊपर कृष्ण होते हैं, अब स्वयं कृष्ण ने अनंत शेष जी को पकड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर लीला है चैतन्य चैतन्यमृत में। किस ढंग से नंदनाचार्य के घर में दोनों का मिलन होता है, और दोनों ने जब आलिंगन किया तो दोनों के नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है, और रोते रोते चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? देखिए, तो नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, मैं तो तीर्थार्थी हूं, तीर्थों का भ्रमण कर रहा हूं, मैं तो हर जगह ये पूछ रहा था कि कृष्ण कहां है, लेकिन मुझे कहीं कृष्ण नहीं मिले। सारे के सारे मंदिर बंद मिले, पट बंद थे, लेकिन फिर लोगों ने मुझे बताया कि कृष्ण गौड़ देश में आ गए हैं, और गौड़ देश में आके उन्होंने दीक्षा ले ली है, और अब गौड़ देश में आके संकीर्तन कर रहे हैं और सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। और इस ढंग से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का यह मिलन बहुत ही मधुर मिलन रहा। और फिर नित्यानंद प्रभु ने पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि कल पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, तो कल व्यास पूजा मनानी है, कहां मनानी चाहिए हमें? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा शिवास आंगन में। तो सबके सब शिवास आंगन में आ गए, और शिवास आंगन में आए तो नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु और सब भक्तगणों ने खूब कीर्तन किया। तो ये पहला अवसर था जब गौर निताई ने कीर्तन किया, गौर निताई की, और बहुत सुंदर कीर्तन किया। कीर्तन ऐसा किया कि कभी तो वो लगते थे कि गौर निताई, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु हवा में हाथ खड़े किए हुए हवा में उड़ रहे हैं, और कभी वो नीचे गिर रहे हैं, कभी लौट रहे हैं, और फिर नाचते नाचते दोनों में स्पर्धा होती थी कि एक दूसरे के चरणों की धूल ली जाए। तो इस ढंग से नाच रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के चरणों की धूल ली जाए, नहीं कोई भी किसी के चरणों की धूल नहीं ले पाया, और बहुत ही अच्छी स्पर्धा चलती रही, खूब नाचते रहे। और नाचते 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 जब काफी समय हो गया तो फिर ये लीला समाप्त हुई, और फिर अगले दिन के व्यास पूजा की तैयारी शुरू हो गई। तो नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर जी के घर में ही रहे, तो रात को नित्यानंद प्रभु जोर जोर से चिल्लाने लगे, गरजने लगे। तो जो नित्यानंद श्रीवास ठाकुर जी के भाई थे रमाई पंडित, वो घबरा गए, और जब उठ के गए नित्यानंद प्रभु जी के कक्ष में तो क्या देखा कि जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, गरज रहे हैं, और अपना जो उनका संन्यास का डंडा था उसको तोड़ दिया, और जो कमंडलू था उसको भी तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा, रमाई पंडित ने श्रीवास ठाकुर को, ये कौन है, ये तो पागल है। तो बोला, हाँ ये पागल है, निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम में। तो बोले, इनको कुछ करो। तो बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, चैतन्य महाप्रभु, निमाई को ही बुलाओ। तो निमाई को बुलाया गया, तो वो आए और उन्होंने इनको शांत किया, और फिर ले गए इनको सुबह गंगा के स्नान करने के लिए। तो जब गंगा में स्नान कर रहे थे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, तो वहां पे क्या आ गए, मगरमच्छ। तो ये नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है, मगरमच्छ को देखकर मगरमच्छ के ऊपर कूद पड़े। तो सबने उनको रोका, क्या कर रहे हो? किसी के रुकने पर नहीं रुकते, केवल चैतन्य बाबू ने समझाया तब वो समझे। फिर जब वापस आए तो व्यास पूजा की तैयारियां शुरू हुई। तो व्यास पूजा से पहले खूब संकीर्तन हुआ, और फिर जब व्यास पूजा मनाना शुरू किया तो श्रीवास ठाकुर जी ने नित्यानंद प्रभु जी को फूल माला दी, बोलो कि इन क्षेत्र के व्यास वेदव्यास जी के ऊपर आप माला अर्पण करें। तो माला लेके चुपचाप खड़े रहे। तो उन्होंने बोला, आप माला अर्पण कीजिए। तो उनको जवाब ही नहीं दे रहे, चुपचाप खड़े रहे। तो श्रीवास ठाकुर परेशान हो गए, क्या है ये? तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास गए कि आप कहिए इनको। चैतन्य महाप्रभु पास में गए कि आप माला अर्पण कीजिए, फिर वो खड़े रहे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको हिलाया, आप माला अर्पण कीजिए वेदव्यास जी के ऊपर। तो तुरंत क्या किया, मुड़कर उन्होंने वेदा से उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर माला डाली। जैसे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर माला डाले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत सुंदर षटभुज रूप दिखाया। तो षटभुज रूप क्या था, चार हाथों में थे शंख चक्र गदा पद्म, एक हाथ में था उनका हल और एक हाथ में जो नित्यानंद प्रभु बलराम जी के हाथ में पाश होता है उसको मेज कहते हैं इंग्लिश में। तो छह भुजाओं का रूप दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु जी को, और इस ढंग से व्यास पूजा मनाई गई। तो शिवा सांगन में नित्यानंद प्रभु जी ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। तो नित्यानंद प्रभु जी बिल्कुल कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जी शिवा ठाकुर के पास जाते हैं, वो कहते हैं किस पागल को अपने घर में रखा हुआ है आपने, कभी उसने कुछ कर दिया तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो शिवा ठाकुर जी कहते हैं कुछ भी कर दे, अगर ये शराब भी पियेंगे तब भी कोई बात नहीं, मैं इनको घर में रखूंगा, मुझे मालूम है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। तो चैतन्यानंद प्रभु हमेशा श्रीवास ठाकुर जी के घर में बाल भाव में रहते थे। वो जब मालती माता जो श्रीवास ठाकुर जी की पत्नी थी उनको माता समझते थे, वो श्रीवास ठाकुर जी को अपना पिता समझते थे। तो वो हमेशा बाल भाव में रूप में रहते थे और तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक मालती माता अपने हाथ से उनको खाना नहीं खिलाएगी। और मालती माता की आयु बहुत बड़ी थी, वो वृद्ध थी, लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु उनका स्पर्श करते थे उनके स्तनों में दूध आ जाता था। तो उनको ऐसे भाव प्रकट होते थे वो किसी को इसको बताते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ कि मालती माता जी श्रीवास ठाकुर जी के पूजा के स्नान का तैयारी कर रहे थे, तो एक कांसे की कटोरी थी जिसमें घी रखा हुआ था। तो वो सामान तैयारी कर रही थी तब ये कौवा आया और कौवे ने उस कटोरी को उठाकर चला गया। तो अब मालती माता रोने लगी कि अगर मेरे पति देव को ये मालूम चल जाएगा तो बहुत गुस्सा करेंगे, तो क्या किया जाए। तो तभी नित्यानंद प्रभु जी वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि मालती माता रो रही है। तो बोले आप क्यों रो रहे हैं, बोले ऐसा ऐसा हो गया। बोले कोई बात नहीं। तो उसी समय कौवा जो लेके गया था घी की कटोरी वो वापिस भी आ गया, लेकिन खाली ऐसे आके बैठ गया। बोले यही कौवा जो घी की कटोरी ले गया था, क्या किया जाए। नित्यानंद प्रभु ने कोई समस्या नहीं, एक कौवे घी वापस लेके आओ। तो कौवा उड़ के गया तुरंत और कटोरी लेकर वापस आ गया। तो मालती माता ने कहा कि घी केवल आप ही कर सकते हैं, कि पूर्व जन्म में ये तो क्या है, घी की कटोरी वापस क्या मंगा रही, आपने तो अपने गुरु सांदपनी मुनि के मरे हुए बच्चों को वापस लिया है, तो आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो बहुत सुंदर सुंदर इनकी लीलाएं हैं। इसी ढंग से सच्ची माता के साथ में नित्यानंद प्रभु जी का बहुत प्रेम था। सच्ची माता जी को सबसे ज्यादा आनंद आता था गौ निताई को बिठा कर प्रसाद खिलाने में। तो एक बार सच्ची माता को एक स्वप्न आया, तो वो स्वप्न उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु को। बोला कि एक बार हमारे जो घर में विग्रह हैं, क्या विग्रह थे सच्ची माता के, कृष्ण और बलराम। तो बोले कृष्ण और बलराम जी के मैंने लिए मैंने रसगुल्ले और संदेश बनाए, और रसगुल्ले और संदेश बना के जब मैं भोग लगा रही थी तो तुम और नित्यानंद प्रभु उस कमरे में आ गए, और जैसे ही वो कृष्ण और बलराम खाने लगे तुमने उनके हाथ से छीन लिया। तो मैंने ये देखा कि तुम लड़ रहे हो बलराम जी के साथ और नित्यानंद प्रभु लड़ रहे हैं कृष्ण के साथ, तो उनको ना आप संदेश खाने दे रहे हो ना रसगुल्ला खाने दे रहे हो। तो वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम कोई देखते नहीं हमारे लिए भोग रखा है। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं चलो अब ये तुम्हारा समय नहीं है, कलयुग आ गया, कलयुग में आपकी जरूरत नहीं है। तो इस ढंग से दोनों लड़ाई हो रही है, और लड़ते 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 मैं देख रही हूं कि नित्यानंद प्रभु ने रोना शुरू कर दिया और बोल रहे कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है, और तभी स्वप्न टूट गया। तो चैतन्य महाप्रभु तो सब समझ गए, उन्होंने अपनी माता को बोला ये बताना मत किसी को, वास्तव में ये जो हमारे अर्चविग्रह हैं ये बहुत शक्तिशाली है। मैंने कई बार ऐसे देखा है कि तुम जब भी भोग रखती थी तो भोग की थाली में से भोजन कम हो जाता था, तो मैं सोचता था कि ये विष्णुप्रिया चुराती होंगी। लेकिन आज मुझे मालूम चला है कि वास्तव में अर्चविग्रह खाते हैं। तो विष्णुप्रिया जी भी सुन रही थी, बहुत मुस्कुराती थी कि ऐसा कभी किया तो नहीं उन्होंने। तो बोले क्या करें, बोले ठीक है नित्यानंद प्रभु को बुलाते हैं आप हमें प्रसाद खिलाना। तो सच्ची माता जी ने फिर नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के लिए खूब प्रसाद बनाया और उन्होंने प्रसाद पाया। तो एक बार क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु सच्ची माता के यहां आए, तो सच्ची माता ने उनके लिए संदेश बनाया, तो उनके लिए एक कटोरी में पांच संदेश लेकर आई। नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, उन्होंने एक संदेश खाया और चार संदेश फेंक दिए। तो सच्ची माता ये हैरान है, क्या फेंक दिए इतने प्रेम से बनाए। तो बोले आपको खाने नहीं है? तो उन्होंने बोला जिसकी इच्छा होगी खाने की अपने आप आ जाएंगे। तो बेचारी सच्ची माता दोबारा से रसोई में गई, कुछ संदेश बच्चों को लेके आते हैं। जब रसोई में गए देखे तो वही चार संदेश अलग से पड़े थे, पता नहीं क्या करते रहते। तो उन्होंने दोबारा से वो संदेश दिए, चलो अब देके आते हैं। जब वापस देने गए तो देखा कि वही चार संदेश वो खा रहे हैं। तो बोले काम आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। तो नित्यानंद प्रभु जब भगवान के प्रेम में डूब जाते थे तो बिल्कुल अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। तो एक बार इतनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे कि चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया जी के साथ बैठे थे और वो उनको तंबूल खिला रही थी कि नित्यानंद प्रभु वहां पे आ गए नाचते हुए, और नाचते नाचते आ गए और ये भूल गए कि उन्होंने कुछ भी कपड़े नहीं डाल रखे। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत शर्म आई, क्या कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि आपके कपड़े कहां हैं? बोले आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बोले मैं पूछ रहा हूं तुम कपड़े कहां हैं? बोले मैं 10 जगह गया कुछ नहीं मिला। बोले मैं तुमसे इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, तुम कुछ क्या बोल रहे हो? क्या मुझे नहीं मालूम सच्ची माता कहां है? अरे तो वो कुछ सुन रहे हैं कुछ बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, खुद ही अपनी चादर उतारी और उनको ढक दिया। तो इस ढंग से जब प्रेम में बिल्कुल उन्मत्त हो जाते थे तो नित्यानंद प्रभु सब कुछ भूल जाते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि आप मुझे अपना कोपिन दें। तो नित्यानंद प्रभु ने चुपचाप अपना कोपिन दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस कोपिन के कई टुकड़े किए और सब भक्तों को बांट दिया और बोला कि सब के सब भक्त इस कोपिन को अपने सर पे बांध लें कि ये नित्यानंद प्रभु का प्रसाद है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद प्रभु इतने प्रेम से उन्मत्त रहते हैं, इनको कोई अगर स्पर्श कर ले, इनका आलिंगन करे, इनका केवल नाम ले ले, उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए आप इस सब जो कोपिन के एक प्रसाद है इसको अपने सर पे बांधिए। तो हम भी देखते हैं जब अभिषेक होता है तो अभिषेक के वस्त्रों को फाड़ फाड़ के पुजारी सबको देते हैं, तो उसको हमें बड़े प्रेम से बांध के रखना चाहिए। हम सर पे तो ना बांधे, कम से कम बाजू पे हम बांध के रखें। तो नित्यानंद प्रभु से हम किसी भी ढंग से हमारा अगर स्पर्श हो जाएगा तो हमें उनकी कृपा मिलेगी। ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। और हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो उसके लिए सबसे सरल तरीका क्या है? नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं गौरांग महाप्रभु का नाम सुनकर। तो हम गौरांगा गौरांगा बोलेंगे तो नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो सब लोग हृदय से एक बार जोर से गौरांगा बोलेंगे, गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो गौरांगा का नाम सुनेंगे तो नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं। और गौरांग महाबू का प्रसन्न होते हैं नित्यानंद प्रभु का नाम सुनकर। तो इस बार फिर हृदय से हम नित्यानंद प्रभु का नाम बोलेंगे गौरांग महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, नित्यानंद 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 गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की। तो इस तरह से बहुत सी लीलाएं हैं। तो अब जिस कारण से नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु का अवसर हुआ कि संकीर्तन आंदोलन को फैलाना है, तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाया और बोला कि जाओ और इस संकीर्तन आंदोलन को द्वार द्वार पे ले जाओ, और कहा कि घर घर जाके भिक्षा मांगो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो करो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम। तो घर घर जाके ये संदेश दो। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी संदेश दिया और बोला कि अगर आप इस ढंग से भिक्षा मांगोगे और भिक्षा मांगने के बाद भी अगर किसी ने कृष्ण का नाम नहीं लिया तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दूंगा। तो सब भक्तों ने बात सुनी तो बड़े हंसने लगे, चलो ठीक है महाप्रभु के आदेश को कौन टाल सकता है। तो दोनों के दोनों हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु जी चल पड़े और घर घर जाकर ये बोलने लगे, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, कि कृष्ण का नाम लो कृष्ण का भजन करो। तो ये भिक्षा मांगते थे, सन्यासी के वेश में थे। तो भक्त लोग देखते थे नवद्वीपवासी के कुछ सन्यासी आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो घर से आटा चावल लेके आते थे, लो भिक्षा। बोले ये नहीं चाहिए, कृष्ण का नाम लो। तो बोले कैसे सन्यासी हैं? कुछ लोग तो बहुत प्रसन्न होते थे, कृष्ण का नाम यहां शुरू कर देते थे। कुछ कहते थे पागल हो गए हैं, ये क्या है, इनको भिक्षा नहीं चाहिए, इनको पागल हो गए, हमें कह रहे हैं कृष्ण का नाम लो। जो भी निमाई पंडित के संपर्क में आता है वो पागल हो जाता है, तो निश्चित रूप से पागल हो गए हैं। और कुछ लोग थे जिनको श्रीवास आंगन में अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, तो उनको वैसे बहुत क्रोध रहता था, तो उनको ये बोल रहे हैं बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, तो वो उनको मारने दौड़ते थे, सब कहते मारो इनको, कहते पहले ही इन्होंने बहुत उद्दम बहुत ज्यादा इन्होंने उत्पात मचाया हुआ है, अब फिर से पहले तो अपने आंगन में करते थे एक घर में, अब घर घर जाके ये कर रहे हैं, तो खूब पीटो इनको, तो लोग इनके पीछे मारने को दौड़ते थे। और कुछ लोग ये सोचते थे कि निश्चित रूप से जासूस हैं, ये मालूम करने आए कि घर के अंदर क्या है और बाद में जाके चोरी करेंगे। तो हर परिस्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया था कि किसी से तर्क वितर्क नहीं करना, केवल भिक्षा मांगनी है। तो ये हम सबके जो हम प्रचार में जुड़े हैं, हम सबके लिए ये आदेश है कि हम प्रचार करते समय किसी से तर्क वितर्क ना करें, चाहे हमें कोई सम्मान दे, चाहे कोई मारने को दौड़े, चाहे बिल्कुल इग्नोर कर दे, हमें भिक्षा मांगते बहुत ही विनम्रता से उनको प्रयास करना चाहिए कि वो कृष्ण का नाम लें। तो इस ढंग से वो प्रचार में जुड़े रहते थे। और फिर बहुत ही प्रसिद्ध लीला हुई, उन्होंने देखा एक बारी किसी नवद्वीप में दो पापी लोग हैं, क्या नाम है इनका, जगाई मधाई, जो कि वास्तव में ब्राह्मण थे, जगदानंद और माधवानंद, और बुरी संगत के कारण अब वो हर तरह का पाप कार्य कर रहे हैं, हर तरह के पाप कार्य में वो डूबे हुए हैं, वो लोगों को लूटते हैं, मदिरा पान करते हैं, गाय का मांस खाते हैं, जितने भी पाप हो सकते हैं वो कर रहे हैं, बस एक बुरा काम नहीं किया उन्होंने, वैष्णव अपराध नहीं किया था। वो इनके इतने पाप होते थे कि कहते थे कि जो यमराज जी के सेक्रेटरी हैं स्कंदगुप्त, उसकी सारी सारी फाइलें भर गई, और कई बार उसको ओवर टाइम करना पड़ता था, सबका सब पूरा ऑफिस जगाई मधाई के करतूतों से भरा हुआ, परेशान हो गए स्कंदगुप्त जी उनके पाप लिख लिख के, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके पास भी जा पाए, जगाई मधाई के पास। तो जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी ने देखा ऐसा, तो नित्यानंद प्रभु जी ने सोचा कि हम इनका उद्धार कर दें तो चैतन्य महाप्रभु का कितना कृपा का प्रचार होगा। तो हरिदास ठाकुर जी ने उनको मना किया, मत करो ऐसा, अरे चलो ये तो अब दूत है, जबरदस्ती उनको ले गए और उनसे बोला कि अब कृष्ण का नाम लो। तो जगाई मधाई ने देखा अभी तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी हमारे सामने आने के लिए, और ये व्यक्ति आकर हमें कह रहा है कि कृष्ण का नाम लो, तो उन्होंने उनको डांट के भगा दिया, तो वो उनके पीछे भागे उनको मारने के लिए। तो जब दोनों भाग रहे थे तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि क्यों फंसा दिया आपने मुसीबत में, मुझे नहीं लगता कि आज हम बच पाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु करें मेरा कसूर थोड़ी है, ये अपने मालिक उसको बोलो, निमाई को उल्टे सीधे आदेश देता है कि सबको उद्धार करो, तो हम क्या करेंगे इसमें। तो भागते हुए वापस आए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि दिन भर जो प्रचार करोगे रात को आके रिपोर्ट दोगे। तो इससे मालूम चलता है कि जो हम प्रचार कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़े हैं एक साइंटिफिक आंदोलन है, ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, टाइम पास के लिए नहीं है कि चलो टाइम पास करना तो प्रचार कर लेते हैं, टाइम पास के लिए चले गए, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, नहीं, दिस इज आवर बिजनेस। चैतन्य महाप्रभु साफ साफ बता रहे हैं कि दिन भर जो करोगे शाम को अगर मुझे बताओगे क्या क्या किया है, जैसे सेल्समैन पूरा दिन में भर में करके शाम को आके अपने मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा जो प्रचार कार्य लग रहे हैं ये अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं है, अपने टाइम पास करने के लिए नहीं है, चलो अच्छा लगता है कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया, इट्स ए सीरियस बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है। तो हमें जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, उनको जाके फिर रिपोर्ट देनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हमने प्रचार किया, ये हमारे पास परिणाम आए। तो उन्होंने जाके रिपोर्ट दी कि महाप्रभु ऐसे ऐसा गए थे, ये मिला। तो महाप्रभु ने बोला कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करना। तो ये बात जब हरिदास ठाकुर जी अद्वैताचार्य जी को बता रहे थे कि ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, तो अद्वैताचार्य जी खूब हंसे, कहते मुझे तो मालूम था एक शराबी शराबियों के पास तो जाएगा, ये नित्यानंद प्रभु तो शराबी है, ये हमेशा मदिरा पिए रहते हैं, तो ये तो मदिरा वालों के पास ही जाएगा, फंस गए तुम अब क्योंकि अद्वैताचार्य जी और नित्यानंद प्रभु के बीच में एक अलग ही विशेष रस था, उनका हम कॉपी नहीं कर सकते। तो अगले कुछ समय के बाद फिर देखते हैं कि दोनों भाई जगाई और मधाई ये आपस में लड़ते रहते थे, आपस में एक दूसरे के बाल नोचते रहते थे, गालियां देते रहते थे, खूब मोटे थे। तो नित्यानंद प्रभु सोचा एक बार फिर जाकर इनकी कृपा की जाए, तो फिर से नित्यानंद प्रभु उनके पास गए और इस बारी मधाई ने जो मदिरा पीते पीते जो मटका बचा हुआ था उससे उनको प्रहार किया और नित्यानंद प्रभु जी के यहां से खून बहना शुरू हो गया। और जब चैतन्य महाप्रभु को यह मालूम चला कि मेरे भक्त के ऊपर प्रहार हुआ है, महाप्रभु तुरंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं इनका सर काट दूंगा। तो देखिए महाप्रभु वैसे तो आदेश दे रहे हैं त्रिनाद अपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा रे, लेकिन अपने भक्तों पर जो प्रहार होता है तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो महाप्रभु बिल्कुल सहन नहीं करते। और महाप्रभु कृष्ण अपने को उनका उन पर दोषारोपण करे तो चुपचाप सहन कर लेंगे, लेकिन भक्तों के ऊपर कुछ उनका कोई अपराध करेगा तो महाप्रभु बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने फिर महाप्रभु से कृपा की याचना की कि आप इस कलयुग में जो अवतरित हुए हैं वो इस ढंग से दुष्टों का संहार नहीं करेंगे, आप हरिनाम से संहार करेंगे इनका। और फिर जगाई और मदाई ने प्रायश्चित किया और जगाई और मदाई के ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई और फिर उनको चैतन्य महाप्रभु का आश्रय मिला और फिर जगाई और मदाई को बहुत प्रार्थनाएं की उन्होंने और उनको सेवा दी गई कि वो गंगा के तट की सफाई करें। और जब वो सफाई करते थे तो बाकी जो जिन लोगों के प्रति उन्होंने अत्याचार किया वो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, इनके ऊपर थूकते थे, इनको अलग अलग गालियां देते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उनका कुछ भी नहीं बोलते थे और चुपचाप जो उन्होंने पुराने पाप किए हैं उसकी सजा के रूप में उसको स्वीकार करते थे। तो इस ढंग से जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं तो हम भी उतने बड़े जगाई मधाई तो नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कई जगाई मधाइयों का उद्धार किया है तो हम भी छोटे छोटे जगाई मधाई हैं। लेकिन हमें उनसे ये सीखना है कि जिस ढंग से जगाई मधाई हमेशा पछतावा करते रहते थे कि उन्होंने कितने पाप किए हैं, तो हमें भी कृष्णा भाना भावित में आने के बाद ये पछतावा करते रहना चाहिए कि हमने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। रिपेंटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पछतावा करते हैं तो पछतावे की अग्नि से हमारे जितने पाप करने की जो इच्छाएं हुई वो समाप्त होती हैं। तो ये जानना चाहिए कि हम कृष्णा भाना भावित से आने से पहले कितने ज्यादा पापी थे, तो उन पापों के लिए हमें पछतावा करना चाहिए और उन पापों की हमें जो भी सजा मिले उसको चुपचाप सहन करते हुए भक्ति में आगे प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए। तो जगाई मधाई ने अपने उदाहरण से यह सिखाया और जब जगाई मधाई का आलिंगन चैतन्य महाप्रभु ने किया तो चैतन्य महाप्रभु का जो पूरा गौर वर्ण था वो क्या हो गया, श्याम वर्ण हो गया। उन्होंने बताया कि मैंने अब तुम्हारे सारे पापों को ले लिया है, लेकिन जो लोग अब वैष्णव अपराध करेंगे उनको ये सारे के सारे पाप अब सहने पड़ेंगे। तो हम अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो जगाई मधाई का जो पापों का अकाउंट था जिसमें स्कंद गुप्त ने ओवरटाइम किया था और सारी सारी फाइलें भरी थी, तो वो व्यक्ति जो वैष्णव अपराधी है उसको सारे पाप सहने पड़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे सारे पाप उनके लिए तो ये यमराज जी ने देखा कि सारी की सारी फाइलें गायब हो गई, अकाउंट जीरो हो गया है, क्योंकि भगवान गीता में प्रॉमिस दे चुके हैं कि सर्वधर्म परित्यजत माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापे फिर मोक्षिष्यामि मा शुचः। तो जैसे जगाई मधाई ने शरणागत किया चैतन्य महाप्रभु ने सारे के सारे पाप खत्म कर दिए। और जब उसको व्यवहारिक रूप से स्कंद गुप्त जी ने देखा कि सारे के सारे जो उनके अकाउंट से जीरो निल, तो ये देखते ही यमराज जी मूर्छित हो गए कि कैसा संभव है, हो कैसे सकता है, कितने पापी लोगों के सारे खत्म कैसे हो गए। तो फिर वो जब आए उन्होंने देखा अपने वाहन से उतर के आए, देखा चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं नवद्वीप में और उनकी कृपा से ये संभव हुआ है। तो इसी तरीके से श्रील प्रभुपाद जो कि नित्यानंद प्रभु के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, ये विदेशों में गए और हजारों हजारों लाखों गौ इन्होंने जगाइयों मधाइयों का उद्धार किया। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जी से पहले गौड़िया उसमें परंपरा में गौड़िया मठ में कभी भी नित्यानंद प्रभु जी का अभिग्रह में नहीं दिखता, केवल चैतन्य महाप्रभु हैं ये जा से गौर गदाधर। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि इनको विदेशों में आके कई जगाइयों मधाइयों का उद्धार करना है, तो श्रील प्रभुपाद जी ने ही जाके नित्यानंद प्रभु जी को स्थापित किया। और हम सबको नित्यानंद प्रभु जी से विशेष याचना करनी चाहिए कि हम आज के दिन ये याचना करें कि हम ज्यादा से ज्यादा गुरु परंपरा की सेवा कर सकें और चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने प्रेम को विकसित कर सकें। नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु हैं, निताई पद कमल कोटि चंद सुशीतल जे छाए जगत जोड़ा है। नित्यानंद प्रभु के चरणों में करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की ठंडक है, शीतलता है, जो कि हमारे हृदय में जलती हुई अग्नि को शांत कर सकती है। नित्यानंद प्रभु बिल्कुल कृपा करने के लिए खड़े हैं। ऐसे भक्त जिनका सब जगह से तिरस्कार हो चुका है, अगर वो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु उनको शरण देंगे। और बिना नितिन प्रभु की शरण प्राप्त किए हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। जैसे कि रघुनाथ दास ठाकुर जी बहुत प्रयास कर रहे थे चैतन्य प्रभु से मिलने के लिए, लेकिन जब पानीहाटी में गए तो तभी नित्यानंद प्रभु उनको क्या कहा कि तुम चोर हो, बिना मेरे बताए तुम्हें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, तुम लूटना चाहते हो। तो जब नित्यानंद प्रभु जी ने रघुनाथ दास ठाकुर जी के शीर्ष पे अपने चरण कमल रखे, उसके बाद ही सारी युक्तियां हुई कि रघुनाथ दास ठाकुर जी अपना घर छोड़कर बड़ी आसानी से पुरी में आकर चैतन्य महाप्रभु से मिल सके। तो बिना नित्यानंद प्रभु की शरण में जाए हमें महाप्रभु की शरण प्राप्त नहीं हो सकती। एक दूसरी लीला में एक बार नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु इकट्ठे बैठे थे, मुरारी गुप्त जी आए, मुरारी गुप्त ने आके पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, तो फिर महाप्रभु ने उनको बताया नहीं, पहले तुम्हें नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना होगा। इसीलिए हमें नित्यानंद प्रभु से याचना करनी चाहिए कि हम इस संकीर्तन आंदोलन को, क्योंकि आप देखिए चैतन्य महाप्रभु को भी आवश्यकता पड़ी नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु का ही उन्होंने के द्वारा ही उन्होंने अपनी कृपा का विस्तार किया, जीवों की उद्धार करने की जो लीला थी उसको पूरा किया। तो इस ढंग से गुरु जो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं वो हम सबको सेवा दे रहे हैं प्रचार कार्य करने की, तो हम सबको भी नित्यानंद प्रभु से कृपा की याचना करते हुए प्रचार कार्य में अपने मन वाणी और कर्म से लग जाना चाहिए। इससे ज्यादा प्रसन्न करने का तरीका और कोई नहीं होगा कि हम अपने मन से वाणी से कर्म से गुरु के आदेशों का पालन करते हुए इस संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाएं। नित्यानंद प्रभु की किसी कोई टिप्पणी कोई और नहीं, महा प्रभुपाद जी ने शुरू किया।
जब नित्यानंद
प्रभु
जब महाप्रभु से जब मिलन हुआ उस समय महाप्रभु संन्यास नहीं लिया?
नहीं, संन्यास बाद में लिया। संन्यास करने का भी जो रहस्य था महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु जी को बताया था, जो कारण था। ठीक है, तो आप स्थान
जब दीक्षा समय गुरु अपने शिष्य के सारे पाप ले लेते हैं तो गुरु इसी जन्म के पाप लेते हैं और सभी जन्मों पाप लेते?
सब जन्मों के, जब तक सब जन्मों के पाप नष्ट नहीं होंगे हम भक्ति में आगे शुरू नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद फिर भी कष्ट के
हम लोग नलायक हैं, फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। गुरु तो इनिशिएशन शुरू जीरो अकाउंट कर देते हैं दीक्षा के समय, जीरो अकाउंट हो गया। अगर हम उस समय पाप ना करें और चुपचाप गुरु के आगे का पालन करें तो बहुत तेजी से प्रगति करेंगे।
कई बार भक्त ने बोले हैं कि उनका जीता में जो पहुंची है उनका टांग में दर्द रहता है, तो मैं पूछा था कह रहे कि ये तो कोई पाप के कारण भोग रहे हैं, जैसे शरीर के दर्द आ रहा, तो ये ऐसे कह रहे थे तो क्या हो?
क्योंकि बहुत ही जगत में
अपने कर्मों का फल समझते हैं।
दीक्षा के समय गुरु सब पाप ले लेते हैं लेकिन हम लोग फिर नया पापों का अकाउंट शुरू करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सब मिलकर नित्यानंद त्रयोदशी को मनाएंगे और 11 बजे से वैष्णव भजन होंगे, 11:30 बजे अभिषेक और 12 बजे भोग ऑफरिंग, 12:30 बजे आरती और 1 बजे सबके लिए एकादशी फीस्ट रहेगा। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत की, गौर प्रेमानंदी।